नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके मनपसंद शो में, जिसका नाम है जिंदगी शांत से। और आप सुन रहे हैं मुझे, अपने होस्ट शांतनु सुनील सक्सेना, यानी शान को। नया साल है और उम्मीद है आप सब में एक नई उमंग भी होगी। बीते साल में हम सब की जिंदगी थम सी गई थी, इस साल उसी थमती गति को फिर से चलाना है। आप सभी को मेरी ओर से नया साल मुबारक। कहे अनकहे किस्से में आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी खुद की लिखी कहानी चट्टो बाबू, और ये कहानी थोड़ी ज्यादा खास है। अक्सर हम सुनते हैं कि कुत्ता इंसान का सबसे वफादार दोस्त होता है। आज की ये कहानी इसी दोस्त के बारे में है। यही है जो बिना आपको कभी जज किए आपकी सारी बात समझता है, सुनता है, शायद ना भी समझे तब भी समझने का ढोंग नहीं करता। श्री ने शेखर से कहा, दोनों पति पत्नी में अक्सर नोकझोंक हो जाया करती, और चूंकि श्री को कुत्ते बेहद पसंद थे, इसलिए कभी कभी नाराजगी में वो शेखर पे ताना कसते हुए कई बार यही कहा करती, हाँ तो हम इनसे भी बदतर हैं। अब ठीक है, अब अच्छा लग रहा है तुम्हें, शेखर ने चिढ़ते हुए कहा। इतनी बात हो ही रही थी कि अचानक कई कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। लो आ गए तुम्हारे दोस्त, शेखर उन कुत्तों की आवाज की ओर इशारा कर बोला। श्री और शेखर जहां रहते थे उस कॉलोनी के आसपास चार पांच कुत्ते घूमा करते थे। श्री कई बार टहलते हुए उन्हें कभी बिस्किट तो कभी ब्रेड, कभी चावल तो कभी कुछ और अक्सर खाने के लिए डाल दिया करती थी। उनके साथ वक्त बिताना उसे बहुत अच्छा लगता था। दूसरी ओर शेखर बाबू, जो कि ठीक इसके उल्टा, कुत्तों से बहुत डरते थे। कुत्तों की एक चीख से शेखर की रूह यूं कांप जाती मानो आसमान से बिजली गिर गई हो। इसलिए हर बार किसी न किसी तरह शेखर इनके आसपास से बच निकलता और जिंदगी भर बचते रहने की मन में ठाने रखता। बचपन से जिस भी दोस्त के घर में कोई ऐसी शख्सियत होती, उस दोस्त के घर से शेखर कन्नी काट ही लिया करता था। एक बार तो नौबत यहां तक आ गई कि एक दोस्त ने उसको अपने घर बुलाकर उसका डर दूर भगाना चाहा। तो डर भागना तो दूर, शेखर दोस्ती करने के चक्कर में बेहोश ही हो गया। ये डर उसके मन में बचपन से ही घर कर गया था। वो स्कूल से आने और होमवर्क करने के बाद एक पार्क में खेलने जाया करता। ये सिलसिला कई महीनों तक चला और फिर एक दिन उनकी कॉलोनी में एक नए पड़ोसी आए, जिनके घर में एक बड़ा जर्मन शेफर्ड था जिसका नाम था रैम्बो। आप में से जिनको भी थोड़ी रुचि है कुत्तों की, आप जानते होंगे कि जर्मन शेफर्ड कितना एक्टिव और आक्रामक होता है। इस नए मेहमान के आने की खबर शेखर को भी थी, और इधर शेखर के पड़ोसी उसे धीरे धीरे पार्क में टहलाने भी आने लगे। जैसे ही शेखर को रैम्बो के आसपास होने का एहसास होता, शेखर दबे पांव उस जगह से गायब हो जाता। कई बार अपने खेलने के समय में फेर बदल करने के बाद एक दिन उसका आमना सामना रैम्बो से हो ही गया। किस्मत से उस दिन पार्क में ज्यादा लोग भी नहीं थे, इसलिए शेखर आराम से झूले झूल रहा था कि अचानक शेखर के पड़ोसी रैम्बो को संभाल नहीं पाए और वो पूरे पार्क में भागने लगा। रैम्बो को अपनी ओर आता देख शेखर की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। डर के मारे वो इतनी जोर से भागा कि उसको देख रैम्बो उसके पीछे भागने लगा। फिर क्या था, शेखर आगे आगे और रैम्बो उसके पीछे। कुछ देर की भागदौड़ के बाद शेखर एक खाली प्लॉट में उगी हुई घास पे गिर पड़ा। रैम्बो के गुर्राने से उसका डर बढ़ता जा रहा था। जैसे ही रैम्बो उसकी ओर गुर्राता हुआ आगे बढ़ा, शेखर अपनी पूरी ताकत से उस पर चीखा। आवाज इतनी तेज थी कि मानो रैम्बो बहरासाही हो गया हो। थोड़ी देर वो शांत तो हो गया, पर जैसे ही उसने दोबारा आगे बढ़ने की कोशिश की, शेखर के पड़ोसी वहां पहुंच गए और रैम्बो को वहां से ले गए। बस उस दिन से ही शेखर ने सोच लिया था कि कभी इनके नजदीक नहीं जाएगा। मार्च 2020। शेखर अपने काम के सिलसिले में एक दो हफ्ते के लिए जर्मनी जाने वाला था। क्योंकि श्री घर पर अकेले रह जाती तो दोनों ने आपस में बात कर श्री का उसके मायके जाना बेहतर समझा। ये उन दिनों की बात है जब कोरोना वायरस देश में पैर जमा ही रहा था और अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की रैली के बाद वायरस की वजह से केसेस में तेजी से बढ़ोतरी होने लगी थी। कुछ दिनों बाद जब शेखर वापस आया तो उसने श्री को वापस आने को कहा। वहां श्री काफी दिनों बाद अपने घर गई थी तो उसने शेखर को एक दो दिन में उसे ले जाने को बोला। 21 मार्च 2020। दुनिया में हालात इतनी तेजी से बदल रहे थे कि कब किस पल क्या हो ये कहना मुश्किल हो गया था। जहां एक तरफ इटली की स्वास्थ्य प्रणाली पूरी तरह से चरमरा रही थी, वहीं दूसरी ओर कई देश बाकी देशों के रवैये पे नजरें लगाए हुए थे। इस सब की गहमा गहमी को देखकर हर शख्स घबराया हुआ था। श्री ने टीवी पे न्यूज देखी तो हैरान रह गई। कर्फ्यू लगाए जाने पर न्यूज चैनल्स में कयास लगाए जा रहे थे। ये सब देख उसने सोचा कि अब और रुकना ठीक नहीं है और शेखर को वहां बुलाने का वक्त भी नहीं है, इसलिए वो जल्दी जल्दी में कैब बुक करके घर के लिए निकल गई। क्योंकि मन में डर था और परेशानी थी, इसलिए श्री जैसे ही अपनी बिल्डिंग वापस पहुंची तो जल्दबाजी में लिफ्ट छोड़ के सीधे सीढ़ियों के रास्ते से ही अपने घर के फ्लोर की तरफ बढ़ने लगी। इस तेजी की वजह से उसके पैरों में जबरदस्त मोच आ गई और उसका चलना, खड़े होना सब मुश्किल हो गया। बिल्डिंग के ही एक डॉक्टर श्री को देखकर एक महीने का बेड रेस्ट बोलते हैं और अपने पैरों पर ज्यादा जोर ना डालने की हिदायत भी देते हैं। दोनों को काफी घबराहट भी होती है, पर एक दूसरे का साथ उस वक्त एक मरम पट्टी जैसा ही काम करता है, खास तौर पे जब पूरा देश बंद होने वाला हो। इस मार्च की रात आखिरकार भारत में बंद का ऐलान हो जाता है। अचानक सब दुकानें बंद, सड़कें बंद, यातायात बंद, खरीदारी बंद, यहां तक कि सब कुछ बंद। एक ऐसा वाक्य जो इस पीढ़ी ने और इससे पिछली पीढ़ी ने शायद ही देखा हो। भाग रही जिंदगी को जैसे रस्सी से पकड़कर रोक लिया हो किसी ने। एक तरफ जहां कई लोगों को छुट्टियां हो जाने की खुशी थी, तो कहीं वो लोग भी थे जो हॉस्पिटल में काम करते थे, पुलिस में थे, उनके लिए एक युद्ध से कम स्थिति नहीं थी। एक ऐसा दौर जो शायद खत्म तो हो जाए पर हमेशा के लिए इतिहास में अमर रहे। इस थमती जिंदगी में शायद कोई संभल जाए, जिंदगी के मायने समझ जाए तो बात ही और है। श्री ने बेड के सिरहाने का सहारा लेते हुए बैठते हुए कहा। हम भी कितना भागते थे ना शेखर, कभी इस चीज के पीछे, कभी उस चीज के। ऐसा लगता है मानो सब चीज के मायने असल थे या हम इस भागदौड़ से पीछा छुड़ाने के लिए भाग रहे थे। सही कह रही हो श्री, शेखर ने जवाब दिया। एकदम से सब रुक तो गया है, पर ये रुकना शायद बेहद जरूरी था। क्या बात है शेखर, आज पहली बार में ही मेरी हाँ में हाँ मिला दी, श्री ने शेखर की ओर चुटकी लेते हुए तंस किया। हाँ मैडम, आपकी बातें सुनने के लिए तरस गया था। वहां जर्मनी में सब कुछ था, बेहतर शहर, बेहतर तौर तरीके और सब कुछ, पर ऐसा कुछ था जो सब होने के बावजूद खालीपन का एहसास दिला रहा था, इसलिए मेरा मन उतना लगा नहीं वहां। शेखर ने श्री का हाथ अपने हाथों में भर लिया। तुम शायद यकीन ना करो, पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ का शोर पसंद है, यहाँ की हर एक चीज पसंद है, यहाँ तक कि तुम्हारे वो खुदते और उनका भौंकना भी पसंद है। मेरा बसेरा वही है मैडम जहां आप हैं, ये कहते हुए शेखर का गला भराया। श्री की आंखें भी गीली थीं और चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट जो हर उदास इंसान को खुशी का एहसास करा दे। श्री ने शेखर की ओर देखा और बोली, यू नो व्हाट शेखर, आई लव यू। शेखर की मुस्कान श्री की बात का बखूबी जवाब दे रही थी, वो भी बिना शब्दों के। पर शेखर मेरे कुत्ते, वो कब से तुम्हें पसंद आने लगे? श्री का बेबाक अंदाज फिर लौटा और ये सुनते ही शेखर ठहाके लगा के हंसने लगा। इतने में सूरज ढल चुका था और लॉकडाउन का पहला दिन खत्म होने को था। दोनों की बातों से घर झिलमिला उठा था। शायद इसकी भनक श्री के पसंदीदा दोस्तों को भी लग गई थी। अचानक उनके भौंकने की आवाज आई, लो मैडम आ गए आपके प्यारे। शेखर ने श्री को बाहर की ओर इशारा करते हुए कहा। श्री एकदम खुशी से उठ के खिड़की की तरफ आने लगी तो शेखर ने उसे समझाते हुए रोक दिया। तुम्हें पता है ना अभी बेड रेस्ट है, अभी बिल्कुल जोर नहीं डालना है पैरों पे। तो शेखर, नहीं शेखर वेखर कुछ नहीं, शेखर ने उसे समझाया। पर शेखर, फिर ये बेचारे क्या खाएंगे, इनको मेरे अलावा कोई कुछ नहीं देता है खाने को। तुम वॉचमैन से बात कर लो ना कि उसको पैसे दें तो वो डाल दे कुछ इन लोगों को खाने के लिए, श्री ने सवाल करते हुए शेखर से पूछा। वॉचमैन भी लॉकडाउन की वजह से अपने घर चला गया है, शेखर ने जवाब दिया। तुम मेरे लिए काम कर सकते हो प्लीज? हाँ बोलो ना, शेखर ने कहा। कुछ और कहता उससे पहले ही श्री के हाव भाव समझते हुए बोला, यार बस ये करने को ना कहो, बाकी सब करा लो, खुद ही बताओ और किससे कहूं, ये बेचारे तो बोल भी नहीं पाते और यहां रहते हुए पता नहीं क्यों इनकी जिम्मेदारी सी लगती है मुझे, श्री ने शेखर से कहा। अच्छा चलो परेशान मत हो, मैं देखता हूं कुछ। फिर शेखर किचन में से उनके लिए श्री के लाए हुए बिस्किट्स लेकर नीचे चला गया, ये सोचकर कि वो कैसे खिला पाएगा और कहीं उस पर बचपन की तरह धावा तो नहीं बोल दिया जाएगा। सारी बातें उसके दिमाग में उथल पुथल मचा रही थीं। नीचे आते ही उसने अपनी नजर इधर उधर दौड़ानी शुरू की जिससे कोई आता दिख जाए और उससे मदद ले ले। पर चूंकि लॉकडाउन लग चुका था, ज्यादातर लोग अपने घरों के अंदर ही थे। जब थोड़ी देर के इंतजार के बाद भी कोई नहीं दिखा तो उसने खुद ही उन लोगों को खिलाने का फैसला किया। उसने सोचा कॉलोनी गेट बंद है तो गेट्स के अंदर से ही डाल देगा सब सामान, इससे काम भी हो जाएगा और डर भी नहीं लगेगा। वो जैसे ही गेट पे पहुंचा तो वो सब उसकी ओर देख आवाजें लगाने लगे। वो थोड़ा सक पकाया पर धीरे से उसने अंदर से ही उन्हें बिस्किट डाले। उसके बिस्किट डालते के साथ ही वो सबके सब उन्हें तेजी से खाने लगे, मानो जैसे कब से भूखे बैठे हों। किसी ने सही कहा है, सच्चाई और भूख छिपाए नहीं छिपती। जैसे जैसे शेखर बिस्किट डालता जाता वैसे ही सब सफा चट हो जाते, फिर धीरे से खुद ही सब आपस में खेलने लगते। ये सिलसिला काफी दिन तक चला और धीरे धीरे श्री के दोस्तों की टोली में से एक कुत्ता शेखर का इंतजार रोज करने लगा। शेखर को आता देख वो इतना उत्साहित हो जाता कि जैसे गेट के अंदर ही आ जाएगा। बाकी के कभी आते तो कभी कहीं और चले जाते खाना ढूंढते ढूंढते, पर एक यही जनाब थे जो शेखर का दिल भी पिघलाने लगे थे। मुलाकातों का सिलसिला चल निकला था। शेखर रोज शाम को खाने के बाद इन लोगों को खाना खिलाने आता और सबसे पहले शेखर की ओर एक मुंह आगे बढ़ता। उसके भौंकने की आवाज से ऐसा ही लगता जैसे वो शेखर को ही आवाज दे रहा हो। एक दिन शेखर नीचे आया और उसने रोजमर्रा की तरह खाना आगे बढ़ाया, पर अब की बार वो सूंघने के बाद खाना छोड़ चला गया। शेखर के काफी इंतजार करने और बुलाने के बाद भी वो खाना सिर्फ बाकी कुत्तों ने ही खाया। ऐसा एक दो दिन तक और हुआ। शेखर को बुरा लग रहा था कि जो शेखर के करीब है उसने खाना अचानक से यूं ही छोड़ दिया, इसलिए वो अगले दिन कुछ नई चीज खाने को लेके जाता है। अब की बार सबसे पहले वही जनाब खाना खाते हैं। इसी तरह धीरे धीरे कभी एक जैसा तो कभी अलग अलग स्वाद शेखर उन सबको देने लगा, और इसी तरह पता चला कि जिस कुत्ते से शेखर की दोस्ती हुई है वो अलग अलग स्वाद ही खाना पसंद करता है। तब से ही शेखर ने उसे नाम दिया छट्टो बाबू। एक बार अपना मन पक्का करके शेखर ने कॉलोनी गेट्स खोल दिए और उसने खुद बाहर जाकर उन सबको खाना खिलाया। इसी तरह से उसने धीरे धीरे अपने डर पे भी काबू पा लिया। डर भी ऐसे खत्म हुआ कि शेखर अब उन सबको ना ही खाना खिलाता बल्कि उनके साथ खूब खेलता भी, और हर शाम दोनों एक दूसरे का इंतजार करते, दोनों यानी शेखर और चट्टो बाबू। और यही होती है ये कहानी खत्म, और शुरू होता है इंतजार एक नई कहानी का, जिससे मैं बहुत जल्द आपके लिए लाने वाला हूँ कहे अनकहे किस्से में। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। खैर, अपने सुझाव और आपको किस्से और कहानी का सेगमेंट कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं। आपका पसंदीदा शो अब दुनिया भर के अलग अलग ऑडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स पे उपलब्ध है, चाहे एप्पल आईट्यून्स हो, स्पॉटिफाई हो, यूट्यूब हो, गाना हो, जियो सावन हो या कोई और ऐप। आप मुझे इजीली फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो सीधे मेरी वेबसाइट से मुझसे संपर्क कर सकते हैं, वेबसाइट एड्रेस डिटेल्स में अवेलेबल है। और इसी के साथ मैं आपका होस्ट शान आपसे अलविदा चाहूँगा। आपसे फिर एक वादा करता हूँ कि जल्द से जल्द आपके लिए एक नई कहानी लेके हाजिर होऊंगा इसी शो में, जिसका नाम है जिंदगी शान से। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और सुरक्षित रहिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट।